ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा और मैं लेके आई हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी किताब चरित्रहीन। बहुत दिनों के बाद आज फिर अघोरमयी सवेरे के समय मोहल्ले की कई बड़ी बूढ़ी औरतों के साथ काली जी के दर्शन करने काली घाट गई थी। कह गई थी कि काली माता की आरती हो जाने के बाद जरा रात गए घर लौटेंगी। रात के 8 बजे होंगे। दिवाकर अपने बिछौने पर चुपचाप लेटा था और उसके सिरहाने एक दिया टिमटिमा रहा था। इसी स्वल्प प्रकाश में वो जो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास पढ़ रहा था उसको मुंह पर औंधाए शायद आयशा की बात सोच रहा था। इसी समय किरणमयी ने भीतर आकर पूछा, लल्ला सो रहे हो क्या? दिवाकर ने मुंह से पोथी हटाए बिना ही कहा, ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है। किरणमयी ने हंसकर कहा, तब तो उसकी खूब दवा हो रही है। सिरहाने रोशनी जला रखने से क्या सिरदर्द अच्छा हो जाता है लल्ला? दिवाकर ने कहा, पुस्तक को कल ही लौटा देना होगा, इसी से पूरी किए डाल रहा हूँ। किरणमयी ने कहा, आंखें मूंद कर आयशा का ध्यान करने से पुस्तक समाप्त न होगी भाई, आंखें खोलकर पढ़नी होगी। सो न हो, खा पी कर ही इसे समाप्त कर लेना। अब चलो, खाना ठंडा हो रहा है। दिवाकर की उठने की इच्छा न थी। उसने थके हुए अनुनय के स्वर में कहा, अभी रहने दो भाभी, मौसी जी को आ जाने दो, उसके बाद खाऊंगा। किरणमयी ने कहा, वे लोग कब लौटेंगी इसका कोई ठीक नहीं है लल्ला। आज मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं है, सोचती हूँ उनकी कोठरी में भोजन की थाली ढककर रख दूंगी और ज़रा सोऊंगी। उठो तो मैं खिला पिला दूँ। यूँ कहकर पास आकर उसने दिवाकर के मुँह से पुस्तक उठा ली। पास ही दिवाकर का लोहे का ट्रंक था। किरणमयी लौट कर उसी पर बैठ गई और बोली, उठो चलो। उठने को जी नहीं चाहता भाभी, इससे तो ये अच्छा होगा कि तुम कुछ बातें करो और मैं सुनूं। केवल बातें सुनकर तो पेट भरता नहीं लल्ला, समय पर खाना भी होता है, ठीक है ना? दिवाकर ने क्षण भर चुप रहकर कहा, अच्छा भाभी, मेरे नहाने खाने पीने सोने की तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? किरणमयी ने हंसकर कहा, क्यों करती हूँ नहीं जानते? बिना कहे कैसे जान सकता हूँ? ये कहना झूठ है लल्ला, बिना कहे भी जाना जा सकता है, और तुम भी ठीक तौर से जानते हो कि क्यों तुम्हारी इतनी चिंता रखती हूँ। दिवाकर का चेहरा लज्जा से लाल हो उठा। वो कुछ देर चुप पड़ा रहा, फिर सहसा न जाने कैसे करुण उदास स्वर में बोला, अच्छा भाभी, एक बात तुमसे पूछूं? एक क्या, 100 बातें पूछना, लेकिन पहले खा पीकर मुझे छुट्टी दो। उसके बाद न हो सारी रात बैठकर तुम्हारी बातों का जवाब देती रहूंगी। क्यों, राजी हो? कहकर वो हंसने लगी। दिवाकर ने इस परिहास का एक पलटा जवाब देने का प्रयास करके कृत्रिम सहानुभूति के स्वर में कहा, अच्छा तो है भाभी, तुम शायद इसी लोहे के कड़े बक्स पर रात भर बैठकर मेरी बातों का जवाब दोगी? किरणमयी ने मुस्कुराकर कहा, इस पर बैठने से अगर तुमको तकलीफ होती हो लल्ला, तो तुम्हारे नरम बिछौने पर आकर बैठ जाऊंगी। क्यों, तब तो फिर मन में क्षोभ न रहेगा। दिवाकर के कानों की लौ तक लज्जा से लाल हो उठी। वो लज्जा से करवट बदलकर लेटा रहा। किरणमयी पास आकर बोली, लो उठो, मुझको छुट्टी दो, इस तरह करवट बदलकर सोने की जरूरत नहीं। रसोई घर से दासी की आवाज सुनाई दी, मैं यहां से सुन रही हूं बहू, और तुम नहीं सुन पाती? मां नीचे से पुकार रही हैं। किरणमयी लौटकर फिर उसी संदूक पर जा बैठी और खफा होकर बोली, देखती हूं तेरे दिमाग बहुत बढ़ गए मेहरी, मैं जाकर दरवाजा खोलूं, तू नहीं खोल सकती? मेहरी ने कहा, मेरे हाथ अटके हैं बहू, इसी से कहा। यूं कहकर वो बकती झकती हुई धम धम पैर पटकती हुई नीचे उतर गई। दरवाजा खुलते ही अघोरमयी बक उठी, तुम सब क्या बहरे हो गए हो मेहरी, मैं आधे घंटे से खड़ी संकल हिला रही हूँ। अब की मेहरी भी गरज उठी, अंधा बहरा ना हो तो क्या कोई तुम्हारे घर में नौकरी करने आए? माँ, अब कोई आंखों कानों वाली मेहरी रख लो और मुझे जवाब दे दो। रसोई घर से सदर दरवाजे की आवाज सुन लेना मेरे बूते की बात नहीं है। अघोरमयी ने नरम होकर कहा, बहू कहाँ है? मेहरी ने अस्फुट स्वर में झनक कर कहा, देवर के साथ दिन भर लाड़ प्यार हुआ करता है, और क्या होगा, अभी मैंने जरा दरवाजा खोल देने के लिए कहा तो आंखें लाल करके कह दिया, तेरे बड़े दिमाग हो गए हैं। हुई अरे मैया, बड़े बाबू, कहकर अप्रतिभ होकर मेहरी एक किनारे हट गई। अघोरमयी ने घूम कर कहा, आओ बेटा उपेन, चलो ऊपर चलो। चलो मौसी, चलता हूँ, कहकर उपेंद्र अघोरमयी के पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। मेहरी की सब बातें उन्होंने सुन ली थीं। ऊपर आकर अघोर मई ने तीखी आवाज में पुकारा, कहाँ हो बहू, जरा बाहर आओ, उपेन आया है। अंधेरी कोठरी के भीतर किरण मई का कलेजा धड़क उठा और बिछौने पर दिवाकर की सारी देह शिथिल पड़ गई, पाले की तरह ठंडी हो गई। अघोर मई ने फिर पुकारा, कहाँ गई, अरे एक चटाई डाल दो ना बहू, उपेन क्या यूं ही खड़ा रहेगा। किरण मई ने कोठरी से बाहर आकर बरामदे में एक चटाई बिछा दी। उसके मुख से एकाएक कोई शब्द न निकला। उपेंद्र ने पास आकर प्रणाम करके कहा, अच्छी तरह से तो है ना भाभी। किरण मई ने अपने को संभाल लिया, सिर हिलाकर कहा, हाँ तुम कैसे हो देवर जी, बहू ठीक है ना, खबर किए बिना एकाएक कैसे। उसके कंठ स्वर को सुनकर उपेंद्र को आश्चर्य हुआ, गले में जैसे कहीं बूंद भर भी रस ना हो, ऐसा सूखा ऐसा नीरस। उपेंद्र ने कहा, मुवक्किल के पैसों से आना हुआ है और कल तीसरे पहर ही लौट जाना होगा। कालीघाट में काम समाप्त करके निकला तो देखा मौसी जी हैं, तभी से इनके साथ साथ घूम रहा हूँ। दिवाकर का क्या हाल है, वो ना कोई चिट्ठी लिखता है ना कोई खबर देता है, शायद कहीं बाहर गया है। किरण मई ने कहा, नहीं सिरदर्द के कारण घर में ही लेटे हैं, क्या जाने शायद सो गए हों। अघोर मई का मिजाज आज अच्छा नहीं था। एक तो बहू के दोष दिखाने का कोई भी मौका वो हाथ से जाने नहीं देती थी, और फिर दिवाकर के ऊपर भी आज वो प्रसन्न न थी। सवेरे उसी के साथ उन्होंने कालीघाट जाना चाहा था, किंतु काम का बहाना करके उसने अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने तीखेपन के साथ कहा, अभी तो तुम उसकी कोठरी में से आई हो बहू, वो सो रहा है या नहीं नहीं जानती। ना नहीं जानती, कहकर उसने सास के ऊपर एक विष भरी दृष्टि डाली। उपेंद्र ने जोर से पुकारा, दिवाकर। कोई आहट नहीं मिली। फिर पुकारा, दिवाकर क्या सो रहा है। वो जाग ही रहा था, इस आह्वान की उपेक्षा न कर सका। जी आता हूँ, कहकर धीरे से कोठरी के बाहर आकर खड़ा हो गया और प्रणाम करके अव्यक्त स्वर में बोला, कब आए छोटे दादा। आज ही सवेरे, तुम्हारे सिर में दर्द है क्या। जी हाँ यूं ही मामूली सा, अघोर मई ने खफा होकर कहा। सिर दर्द ना करे तो क्या हो बच्चा, पहले पहल तो कुछ देर बाहर घूम फिर भी आते थे, अब तो बिल्कुल ही घर के बाहर नहीं होते। सवेरे मैंने कहा, बेटा दीबू मेरे साथ जरा काली मंदिर तक तो चल बेटा, कह दिया नहीं मौसी मुझे काम है। अच्छा बताओ तो क्या काम था। दिवाकर चुप खड़ा रहा। उपेंद्र ने पूछा, चिट्ठी पत्री लिखना भी तो तूने बंद कर दिया है, किस कॉलेज में नाम लिखाया है। दिवाकर ने धीरे से कहा, कॉलेज खुलते ही नाम लिखा लूंगा, अभी भर्ती नहीं हुआ। खुलते ही नाम लिखा लूंगा, अब तक नहीं लिखाया। असहनीय क्रोध से उपेंद्र की आंखें अंगारे की तरह जल उठी। कॉलेजों को खुले 16-17 दिन हो गए, तुझे इसकी भी खबर नहीं। दिवाकर का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया, वो काठ की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। अघोर मई अत्यंत खीज के साथ कहने लगी, कैसे खबर हो उपेन, दोनों जने रात दिन क्या गपशप हंसी तमाशे फुसफुस किया करते हैं यही जाने। बार बार कहती हूँ कि बहू ये पराया लड़का है, लिखने पढ़ने आया है, उसके साथ आठों पहर इतना क्यों। देवर है तो क्या हुआ, बहू बेटी को सयाने लड़के की क्या तनिक भी लाज शर्म न होनी चाहिए। सो कौन किसकी सुनता है। फिर उपेंद्र की ओर देखकर बोली, तू बैठा है उपेन इसी से, नहीं तो अब तक आकर मेरा झोंटा पकड़ लेती। ये ऐसी लक्ष्मी बहू है भैया, मैं कसम खाकर कहती हूँ उपेन, सारा दोष इसी अभागी का है। किरण मई कुछ ही फासले पर खड़ी थी, एक बात का भी जवाब नहीं दिया और धीरे से रसोई घर की ओर चली गई। अघोर मई ने वैसे ही क्रुद्ध स्वर में कहा, अरे ओ बड़े आदमी की बेटी, बेटा मेरा दिन भर का उपासा है, कुछ खाने पीने की तैयारी कर, इस तरह चले जाने से क्या होगा। किरण मई घूम कर खड़ी हो गई और बिल्कुल ही सहज स्वर में बोली, वही करने तो जा रही हूँ माँ। फिर उपेंद्र को लक्ष्य करके बोली, भाग न जाना देवर जी, मुझे कुछ पूड़ियाँ बनाने में 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। साथ ही स्तब्ध लगभग बेहोश दिवाकर से कहा, लल्ला आओ तुम्हें भी कुछ खाने को दे दूँ, रसोई घर में आ जाओ। माँ मेहरी को बाजार भेजे देती हूँ, देवर जी के लिए कुछ मिठाई ला देगी। अघोर मई अथवा उपेंद्र कोई जवाब न दे सका। इस बहू के अपार संयम और असीम अहंकार ने जैसे एक साथ बुद्धि की सीमा से बाहर होकर कुछ देर के लिए उन्हें अवाक और वज्राहत सा कर दिया। लगभग घंटे भर तक बातचीत करके अघोर मई अपना आह्वेक और जप करने के लिए उठ गई। किरण मई ने उपेन के पास आकर कहा, अपने कमरे में तुम्हारा खाना परोस कर रखाई हूँ, चलो। उपेंद्र चुपचाप उठकर अपने लिए बिछाए गए आसन पर जाकर बैठ गए। किरण मई कुछ फासले से फर्श के ऊपर बैठकर बोली, आज यही जो कुछ है खा लो देवर जी, इससे अधिक बनाने में बेकार रात हो जाती। उपेंद्र ने सिर उठाकर देखा। दीपक के क्षीण प्रकाश में उसका मुख पत्थर की तरह कठोर दिखाई दे रहा था। उसने खाने की थाली एक तरफ हटाकर कहा, भाभी खाने के लिए तो इतना ही काफ़ी है, लेकिन मैं खाने के लिए नहीं आया, आपके साथ निराले में दो बातें करने आया हूँ। किरणमयी ने कहा, मेरे बड़े भाग्य, लेकिन खाओगे क्यों नहीं? उपेंद्र क्षण भर आँखें नीचे किए धरती की ओर देखते रहे। उनका कठिन मुख जैसे और भी कठिन दिखाई देने लगा। बोले, आपका छुआ खाने में आज मुझे घृणा मालूम हो रही है। किरणमयी चुपचाप गर्दन झुकाए बैठी रही। कुछ क्षण बाद सिर उठाकर धीरे से बोली, तो फिर खाने की ज़रूरत नहीं। फिर कुछ देर तक सिर झुकाए रहने के बाद गर्दन उठाकर ज़रा हंसी, बोली, घृणा होने की बात ही है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे मुँह से ये बात सुनूंगी। वो सिर्फ एक आदमी था जो इस तरह घृणा से थाली हटा सकता था, और वो था सतीश, तुम नहीं देवर जी। उपेंद्र क्रोध, घृणा और विस्मय से अवाक होकर ताकते रहे। किरणमयी वैसे ही शांत कठोर भाव से कहती गई, तुम्हारा क्रोध अथवा घृणा दिवाकर को ही लेकर तो है, किंतु एक विधवा के निकट जो वो है, तुम भी तो वही हो। उसके साथ मेरा संबंध कहाँ तक पहुँच गया है, ये तुम लोगों का केवल अनुमान है, किंतु उस दिन जब मैंने अपने मुँह से तुम्हारे प्रति अपना प्रेम जताया था, तब तो तुमने मेरी परोसी हुई भोजन की थाली इस तरह घृणा से अलग नहीं खिसका दी थी। अपनी दफा शायद पराई स्त्री के हाथ की मिठाई में प्रेम का मधु अधिक मधुर लगता है देवर जी। उपेंद्र ने भीतर के दुर्निर्वार क्रोध को प्राणपण से संभाल कर कहा, भाभी यद्यपि उसका नाम आपके कान में डालना भी उसका अपमान करना है, किंतु तो भी आपको स्मरण कराए देता हूँ कि मेरी वो सुरबाला आज भी जीवित है। वो कहती है कि मुझे जिसने एक बार प्यार किया है, उसकी मजाल क्या है कि और किसी को प्यार करे। मैंने केवल इसी भरोसे पर दिवाकर को आपके हाथ सौंप दिया था। सोचा था इन सब बातों में सुरबाला से कभी गलती नहीं होती। बात पूरी होने के पहले ही किरणमयी एकाएक दोनों हाथ उठाकर कह उठी, ठहरो देवर जी, ये बात तुमने अभी निसंशय रूप से कैसे विश्वास कर ली कि उससे गलती हुई, तुमसे नहीं हुई? उपेंद्र ने एकाएक खड़े होकर कहा, रात हुई जा रही है, मुझे बहस करने की फुर्सत नहीं है भाभी। मैं आपको खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ, लेकिन ये बात निश्चय जान रखिएगा कि आप प्यार किसी को नहीं कर सकती। ये आपके बूते की बात नहीं है, आप केवल सर्वनाश कर सकेंगी। छी छी, अंत में दिवा को। घृणा से उनका कंठावरोध हो गया, किंतु नीचे दृष्टिपात करके देखा, किरणमयी का चेहरा ऐसा विवर्ण हो गया है जैसे किसी ने उसकी छाती में अकस्मात गोली मार दी हो। दरवाजे के बाहर खड़े होकर अघोरमयी ने कहा, भोजन कर चुके उपेन? उपेन ने कहा, नहीं मौसी जी, खाना तो नहीं हो सका, तबीयत बहुत खराब है। अघोरमयी ने व्याकुल होकर कहा, तबीयत खराब है, ये क्यों? अच्छा तो न हो, आज यहीं सो जाओ, अब ना जाओ बेटा। नहीं मौसी, मुझे जाना ही होगा, कहते हुए उपेंद्र बाहर निकल आए। दिवाकर की कोठरी के सामने आकर पुकारा, देवा। दिवाकर दिया बुझाकर लेट रहा था। उसके हृदय का हाल केवल अंतर्यामी ही जानते थे। अव्यक्त गले से जी कहकर कांपते हुए पैरों से बाहर आकर खड़ा हो गया। उपेंद्र ने कहा, अपना बिस्तर बांध ले, बक्स ले ले और मेरे साथ चल। अघोरमयी ने विस्मित और व्यस्त होकर कहा, ये क्या उपेन, रात को लड़का कहाँ जाएगा? उपेंद्र ने कहा, मेरे साथ जाएगा, इसमें चिंता की क्या बात है मौसी। दिवा जल्दी तैयार हो ले, मैं गाड़ी लाने जाता हूँ। अघोरमयी ने उपेंद्र का हाथ पकड़कर विनती के स्वर में कहा, ना बेटा, आज अमावस की रात को उसका जाना किसी तरह नहीं हो सकता। लड़का है, एक अन्याय न हो, उससे हो ही गया हो तो उसे यहाँ न रखना, कल परसों चला जाएगा, लेकिन आज रात को मैं किसी तरह नहीं जाने दूंगी। बाधा पाकर हताश होकर उपेंद्र ने कहा, लेकिन अब उसे एक रात भी यहाँ रखने को जी नहीं चाहता मौसी। अच्छा आज अमावस की रात रहने दो, लेकिन कल सवेरे ना रोकना, 10 बजे के भीतर ही इसे ज्योतिष बाबू के यहाँ पहुँच जाना चाहिए। ये कहकर और नमस्कार करके उपेंद्र तेजी के साथ उतर गए। सदर दरवाजे के पास अंधकार में पीछे से उनकी चादर का कोना खींचा। मुंह घुमाते ही किरणमयी ने पलक मारते ही झुककर दोनों हाथों से उपेंद्र के पैर पकड़कर कहा, मेरी छाती फटी जाती है देवर जी, सब झूठ है, सब झूठ है। भला तुम्हारे आसन पर दिवा को? नास्तिक, अपवित्र, मायाविनी, कहकर उपेंद्र ने उस ओर देखा भी नहीं और वो तेजी से चले गए। किरणमयी बिजली की तेजी से उठ बैठी, चीख कर कुछ कहना चाहा, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकली, केवल खुले हुए दरवाजे के बाहर अंधकार में ताकती रह गई। उसकी निष्पलक दोनों आँखों से अंगारे छिटकने लगे। बहुत दिन पहले ठीक इसी जगह पर, इसी अंधकार पूर्ण सीली धरती के ऊपर, खड़े होकर उसकी आंखों में ऐसी ही उन्मत्त दृष्टि, ऐसी ही प्रज्वलित अग्निशिखा दिखाई दी थी जिस दिन उपेंद्र पहले पहल सतीश को साथ लेकर लौटे थे। आज फिर अंतिम विदाई के दिन भी उन्हीं के विरुद्ध उन्हीं दोनों आंखों में उसी तरह वैसी ही आग जलने लगी।
अरे मैया, ये तो बहू जी हैं, अरे यहां इस तरह क्यों बैठी हो?
तू घर जा रही है क्या? कहकर किरणमयी हड़बड़ाकर उठ बैठी और महरी का हाथ पकड़कर बोली, जरा मेरी कोठरी में चल, तुझसे दो बातें कर लूं। फिर जोर करके उसे अपनी कोठरी में खींच ले गई और दिए की बत्ती उकसाकर संदूक खोलकर एक जोड़ी चांदी की मोटी झांझ निकालकर बोली, ये अपनी लड़की को पहनने के लिए दे देना महरी।
ना ना, तुझे मेरे सिर की कसम, तुझे लेना ही होगा, अगर फिर कभी भेंट ना हो।
कहते कहते उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे।
ये सब क्या है बहू?
कहकर महरी विहल दृष्टि से देखने लगी। किरणमयी ने आंखें पोंछते हुए कहा,
तेरे सिवा मेरा अपना कोई नहीं है महरी, मुझे बचा, मेरी रक्षा कर, यहाँ रहूंगी तो मेरी छाती फट जाएगी।
महरी चुपचाप किरणमयी को सिर से पैर तक बारंबार निहारती रही। अंत में एक लंबी सांस छोड़कर बोली,
मैं सब समझती हूँ बहू रानी, आखिर मैं भी तो औरत हूँ। मेरे मर्द ने जिस दिन पोखर के घाट पर रोकर कहा था कि जाता हूँ मुक्ता, अब शायद फिर भेंट न होगी, तब मैंने भी उसके पैर पकड़कर रोते रोते कहा था कि अजी मुझे भी अपने साथ ले चलो, यहाँ छोड़ जाओगे तो मेरी छाती फट जाएगी।
हाँ तो सवेरे ही शायद छोटे बाबू यहाँ से चले जा रहे हैं बहू,
किरणमयी ने कहा। हाँ, लेकिन कलकत्ते में हम लोगों का रहना ना होगा, तू बता कहाँ जाऊँ? महरी ने तनिक भी चिंता ना करके कहा,
तुम अराकान में चली जाओ बहू और वहीं सुख से रहो, मेरी छोटी बहन भी वहीं है, मेरा नाम लेने से वो तुम लोगों को सिर माथे कर लेगी, आज मंगलवार है, कल तड़के ही जहाज छूटेगा, जाओगी वहां बहू?
किरणमयी उसके गले से लिपट गई। महरी ने आंचल से आंसू पोंछकर सांत्वना देकर कहा,
तुम लोग तैयार रहो बहू, मैं सवेरे गाड़ी लाकर ले जाऊंगी, किसी को कानों कान खबर न होगी कि तुम लोग कहाँ गए, जाओ बहू, छोटे बाबू को छोड़कर तुम नहीं जियोगी,
कहकर उसने आंचल खींचकर अपनी आंखों पर लगा लिया।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।